प्रभु का की सेवा करके और उनसे अपना सुख चाहता है तो ये भक्ति है कि नहीं है? और प्रभु की सेवा करने से उनको सुख होने से जो अपने सुख होता है ये बुरा है कि अच्छा है? ये अच्छा ही जरूर होगा। एक आदमी मानो कि नवदीप जाना चाहता है, अब वो जाना चाहता है तो ये भक्ति है कि अभक्ति है, ये कैसे विचार होगा? किस लिए जाना चाहता है इसके ऊपर में सब कुछ निर्भर है। किस लिए जाना चाहता है? गुरु जी ने आदेश दिया जे तुम जाओ सेवा करो, ये मान ले कि नहीं, तो किस लिए हम जा रहे हैं? जाने का उद्देश्य क्या है? कोई भी काम, ये जाने मैं नहीं कहता, कोई भी काम करने के पहले ये विचार किया, इससे हमारे हरि गुरु वैष्णव हैं भगवान हैं उनको सुख होगा कि नहीं होगा, उससे हमको सुख होगा अभी या प्रभु को सुख होगा, इस सब विचार करें। अब उसमें हम जो जाना चाहते हैं या ये काम करना चाहते हैं किस लिए करना चाहते हैं? अब जैसे मान ले कि ये लगाए तो इस लगाने से वो प्रभु सुखी रहेंगे ना हम सुखी रहेंगे, क्या विचार? नहीं भी हो सकता है, विचार के ऊपर में निर्भर। यदि उसका ऐसा ऊंचा विचार कोई हो तो उसमें भक्ति भी हो सकती है, और नहीं तो यदि अपना सुख कुछ रहेगा तो भक्ति नहीं। इसलिए कोई भी काम करो तुम लोग ये विचार करके देखो उसके भीतर से, जो हमारा ये मन जो कह रहा है, मन अधिकांश रूप में भक्ति विरोधी काम करता है, तो ये मन किस लिए ऐसा कह रहा है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए अथवा अपने लिए? गाड़ी जा रही है कृष्णनगर से, उसमें प्रभुपाद जी बैठे हुए भक्ति सिद्धांत कृष्ण की, और उसमें हजारों आदमी जा रहे हैं उत्सव में कलकत्ते बाग बाजार से माया, सब लोग चढ़ गए, गाड़ी ने भी शुल्क दे दिया, दराज प्लेटफार्म पर एक आदमी केवल खड़ा है, वो निशिकांत संन्याल, निशिकांत संन्याल हिस्ट्री के बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों के वो उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो वहीं पर खड़े रहे। तो सब लोगों ने कहा जी आ जाओ आ जाओ आ जाइए, खड़े क्यों हैं? प्रभुपाद जी ने तो कहा नहीं, हम अपने मन से नहीं जाएंगे, प्रभुपाद जी देखेंगे जी हमारे द्वारा वहां कुछ सेवा होगी ले जाएंगे तब तो जाएंगे, तो ऐसे कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं, अभी तक हमको प्रभुपाद जी नहीं। तो सब लोगों ने कहा तो प्रभुपाद जी आइए, ये तक तो स्थूल है किंतु अंतर से भी देखा जाता है सेवा की भावना, अंतर से विचार, एक तो कह दिया गया और एक अंदर से भी समझेगा कि प्रभुपाद जी की इच्छा है तो वो तो और उत्तम है, किंतु हम लोगों को यही विचार करके देखना है इस काम करने से भगवान प्रसन्न यदि हुए तब तो ये भक्ति हुई, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं तो मालूम हो जाएगा हृदय से। तो यहाँ पर गुरु शिष्य का जो संवाद अभी पीछे हुआ सब इसी के ऊपर में ये हुआ, नारद जी शिष्य के मन की बात को जान जाते हैं और वो नारद जी के मन की बात को सुख रूप में कहने पर भी वो समझ जाते हैं, और ठीक ऐसा ही मान लेती जैसे हम लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, सुनने के बाद में एक ही समान सभी नहीं समझेंगे। अब इसके बाद में चिंता करो तो लोग अपने आप, यदि नहीं समझा तो जो समझे हैं उनसे बातचीत कर सकते। प्रसाद पाने के समय में सब एकत्र होते हैं या और किसी समय में एकत्रित होते हैं बातचीत के, इसी का नाम अनुशीलन और इष्ट गोष्ठी। हम लोगों का जैसा पाठ होना चाहिए यहाँ पर पाठ नहीं हो रहा है, ये इष्ट गोष्ठी के रूप में हम लोगों का पाठ से अधिक सुविधा नहीं हुई। शब्दों का अर्थ बोल ला दिया और हो गया, इष्ट गोष्ठी के लिए इष्ट गोष्ठी होनी चाहिए परस्पर वार्तालाप के द्वारा। उसमें हारने और भूलने का कोई प्रश्न नहीं, जब मैं हार गया और ये जीत जाएंगे तब तक क्रोध इत्यादि आ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं। तो नम्र से स्पर्धा रहेगी, स्पर्धा जरूर होनी चाहिए। वैकुंठ जगत क्या बोलो, वृंदावन तक ये स्पर्धा है सेवा, इसलिए स्पर्धा होनी चाहिए, नहीं तो कभी उन्नति नहीं होगी। मैं कल तक बताया था हनुमान जी पकड़ के ले गए, जब हनुमान जी उसको आलिंगन करके और खींच करके ले गए, लेने के बाद में रामचंद्र जी का सौंदर्य देखा हमने। देखा क्या, अखिल माधुरी मय प्रसाद मुख्य, अखिल माधुरी मय साम्राज्य सिंहासन मास्तित सुखम कृष्ण महापुरुष लक्षणाधिमित नारायण उपमितम कथंचन। बहुत अधिक क्या देखा पड़ी माधुरी, कहीं कहीं पर वो माधुरी नारायण से कहीं मिलती जुलती है और कहीं कहीं तो उससे भी ऊपर पराभूत करके और ऊपर पहुंच जाती है नारायण से भी उनकी माधुरी। महाराज धीराज राजोचित सिंहासन पर सुख से बैठे हुए हैं और महापुरुष के जितने भी लक्षण हैं उनके अंगों में सब दिखाई पड़ रहा है। महापुरुष का लक्षण क्या है, अजान लंबित, कुछ हर्ष अंग और कुछ दीर्घ होते हैं,
गंभीर।
कंधा कैसा होगा, कंधा चौड़ा नहीं होता, कंधा ऊंचा होता है, वस्त्रक्षल चौड़ा, कमर
पतली, ललाट उन्नत नासा
दीर्घ, नासा तिल फूल के समान,
तिल फूल जीना था बदन सुंदर,
ऐसे ही उनके बदना, उनके सब लक्षण हैं पीछे की
नाभि गंभीर,
कुछ गंभीर कुछ हर्ष कभी देर कभी कुछ, स्वर भी गंभीर। तो कुछ अंग अंगों की दृष्टि से नारायण के समान और कुछ में नारायण से भी विशेषता उनमें है, आनंद से सुख से सिंहासन पर बैठे, गंभीर नहीं। गंभीर होना क्या है, चिंता, गंभीर नहीं। जैसे कि शंकर जी के दो आदमी भक्तों में झगड़ा लगा, तो दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि वो फैसला के लिए एक क्रिश्चियन जज के पास में पहुंचे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तुम लोग अपने अपने उपास्य का चित्र ले आना करो, अब तब मैं विचार करके बताऊँ। दूसरे दिन शंकर की एक का चित्र और ये कृष्ण का चित्र ले, तो उसने बड़े ध्यान से देखा, शंकर जी को देखा यहाँ पर अर्धचंद्र है, ध्यान मुद्रा है, ऐसे ध्यान कर रहे हैं और शुभ्र उनका बदन है, और कृष्ण को देखा कंदर्पण वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित रूप में हंसते हुए मुस्कुराते हुए पांची गाते हुए और मुरली बजा रहे हैं। आदमी मुरली कब बजाएगा? सुख से रहेगा, कोई चिंता नहीं है, तब तो वो मुरली बजाएगा और हंसता हुआ रहेगा। इनको देखा गंभीर मुद्रा में ध्यान लगाए तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसका ध्यान कर रहे हैं? उनके उपास्य से कहा, मालूम होता है ये ध्यान कर, तो ध्यान आदमी करता है अपने अपने से बड़े का, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी राम का। तब तो इनसे भी बड़ा कोई है, और ये देखो ये क्या कर रहा है, पेड़ के नीचे फूल फूले हुए हैं और उसी के अंदर में बड़े आराम के साथ में चैन से बंसी बजा रहे हैं। चैन से बंसी बजाना मैंने क्या, कोई चिंता नहीं,
निश्चिंत होकर के आनंद
करते, इसलिए यही मन को यही मालूम होता है, यही बड़ा है। जब चिंता नहीं रहेगी निश्चिंत, तो इसका मतलब है जो वो प्रसन्न है, और गंभीर रहेगा तो इसका मतलब है वो किसी विषय में चिंता कर रहा है। रामचंद्र जी सुख से राजोचित सिंहासन पर बैठे। महापुरुष के लक्षण अर्थात अंगों का विन्यास बहुत ही सुंदर है, जो अंग जैसा होना चाहिए मनुष्यों में जो संभव पर नहीं है, तो उससे सौंदर्य है। वयस रामचंद्र जी का वयस भी किशोर ही होता है, युवा
नौजवान
संपन्न। वर्ण नौजवान किशोर तो रहता है शादी के समय, लेकिन फिर वो बढ़ जाता है, वन में जाने पर वो नौजवान हो जाता है। वर्ण वर्ण मैंने क्या, श्याम वर्ण, किंतु उसमें श्याम में भी
दुर्बादल श्याम,
मुख में आभा और जल है पानी,
तो लावण
लावण लावण में है, और भूषणों की शोभा विशेष करके धनुष और बाण की शोभा। चार भुजा का आदमी अच्छा लगेगा ना दो भुजा का, तो वो उसमें कुछ ऐश्वर्य हो जाएगा, इसमें ऐश्वर्य। देखा ये सब चीजें रामचंद्र जी ने किया, और उनके परिकरों को देखा जो वहां के परिकरों से भी ये सुंदर है। तब दर्शन आनंद भरे न मोह, दर्शन जो किया आनंद में ये उचित हो गए। दंड प्रणामार्थी इवापत पूरा, समुचित होकर के दंड प्रणाम करने के लिए भूमि तल पर ये गिर गए। दंड प्रणाम इव आपतम पूरा, उनके सामने दंड प्रणाम की तरह इव गिरने नहीं पाए, किंतु मालूम है ऐसा है क्यों, अरे वहां पर दंडोत प्रणाम की कोई उस तरह से उनके परिकरों इतने विनम्र हैं कि प्रणाम करने नहीं दिया, ऊपर से उठा लिया, इसलिए इतना आनंद हुआ कि आनंद के मारे वो मोहित मूर्छित हो गए। किंतु यहाँ पर ये बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी, आनंद में कोई मूर्छित हो गया इस लौकिक जगत, तो मूर्छित हो गया तो उस मूर्छा अवस्था में अनुभूति नहीं रही, मूर्छा का सेंस नहीं रही, और वहाँ भगवत राज्य में जो आनंद की मूर्छा होती है उसमें ऐसा मोह और अज्ञानता नहीं होती, उसमें बल्कि और निकट से उससे संपर्क होता है, आत्मा के द्वारा मन के द्वारा वो सेवा करता है। किंतु भक्त जो साधना करता है वो समस्त साधनाओं का फल है। ध्यान का फल क्या है? ध्यान आदमी करता है, जैसे अष्टकालीय लीला हम लोग वैष्णव में चिंतन करने की रीति है, तो ये परिपक्व दशा में क्या होगा? साक्षात रूप में भगवान की सेवा की प्राप्ति हो करके और उनकी सेवा करेंगे और साक्षात रूप से कृष्ण का दर्शन। तो ध्यान का परिपक्व जो फल है वह है साक्षात रूप में भगवान का दर्शन और उनकी सेवा। स्मरण का क्या है? वही तो ये फिर तो गए या प्रेम में विवश हो गए, किंतु इनकी स्मृति भ्रष्ट नहीं हुई। और जैसे कि इंजेक्शन देने से आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसे नहीं हुए। समाधि में, वैष्णव समाधि में यही होता है, क्रिया युक्त होकर के होता है
सभी कल्प।
और इसमें होता है अद्वैतवाद की समाधि में शून्य और उसमें क्रिया युक्त, किंतु क्रिया युक्त होने पर भी ध्यान ने जो दर्शन किया ध्रुव ने भगवान का रूप, तृप्ति नहीं हुई। आंख खोल करके देखा, खोल करके सामने देखा तब तृप्ति। इसलिए भक्ति राज्य में ध्यान का फल भी साक्षात रूप से भगवान का दर्शन और उनकी सेवा की प्राप्ति। इसलिए ये कह रहे हैं चक्षु के द्वारा जो दर्शन होता है वही अशेष पुरुषार्थ है, ठीक है, हम बतला रहे हैं। और वही अंत साक्षात्कार का ध्यान की परिपक्व दशा या अंतकार साक्षात्कार साक्षात्कार। ब्रह्मा जी ने भी देखा भगवान और उनसे लाभ भी किया कुछ, किंतु जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उनको तृप्ति नहीं हुई। ध्यान में कुछ हो जाए ना, भगवान मिल भी जाए, तो वो कुछ हुआ तो किंतु तृप्ति नहीं हो, और साक्षात रूप में हो तो तृप्ति हो जाए। अंतकार अंत साक्षात्कार भगवान, जिस भगवान की कृपा से होती है, भगवान की कृपा से ही अंतर साक्षात्कार होगा, किंतु उससे अधिक यदि कृपा हो तो साक्षात साक्षात्कार होगा, ऐसे नहीं होता। अब ये इनके सामने वो गिर गए, फिर उठ करके खड़े हुए और प्रभु को उन्होंने देखा। पुनः पुनः प्रणाम करने की ये करने लगे। मान तत्र हित्वा प्रभु जी ने अजय, नहीं तुम दुख मत पाओ, बार बार प्रणाम करने की जरूरत है, बड़े कोमल और मधुर और हनुमान जी को कहा जी जाओ इसे स्थिर करो। हनुमान जी इनको स्वस्थ करके और झट एक लंफ में ऐसे कूदे कि अपने प्रभु के चरणों के समय पहुंच करके उनके चरणों की सेवा और इनको शांत अंत करके एक जगह इनको खड़े। प्रभु ने इनको कहा कि सांत्वना दो, सांत्वना तो दिया, तो सांत्वना देकर के कुछ देर रहते या अपने पास में रखते, किंतु उनको छोड़ करके जो चले आए ये एक प्रकार का दोष है। कारण है कि हनुमान के लिए ये दोष नहीं है, बंदर के स्वभाव से पहले दोष कोई मत ले। और प्रभु के प्रति इतनी अनुरक्ति है कि दूसरे के प्रति नहीं है। भजन मैंने क्या
सेवा
ना, सेवा है या आसक्ति है, हमको भजन के प्रति रहेगा वो आवेश आसक्ति, भजनीय के प्रति, भजनीय माने अच्छा बीच में कोई आ जाए उसके प्रति हो जाए तो हो गया गड़बड़, बीच में मत आने दो किसी को, बीच में आएगा जैसे कि वो बिल्व मंगल जी भजन कर रहे हैं, भजनी के प्रति कुछ निष्ठा है और बीच में आ गई चिंतामणि या चिंतामणि को भी छोड़ दिया और चले वृंदावन कृष्ण का स्मरण करते हुए और कुएं पर न ज्योति मिल गई और बीच में उसके प्रति उन्होंने थोड़ी सी आसक्ति कर दी तो उनको तो भगवान की विशेष कृपा थी और निष्ठा मान थी इसलिए पूछा। ऐसे ही हमारे बीच में कोई तीसरा ना आने पाए, हाँ तीसरा आएगा एक थोड़ा सा उसमें क्या गुरु और वो वैष्णव जो भगवान के मिलन में हमारी सहायता करते हैं तब तो ठीक, किंतु वो भी इसके बीच में नहीं पड़ेगा, वो चेष्टा कराएगा क्या हमारे प्रति न हो बल्कि जिसको हम जिसके प्रति ले जाना चाहते हैं राधा कृष्ण के प्रति ये आसक्त होता हुआ यही तो चाहेगा ना गुरु, यही चाहेगा और गुरु कहेगा राधा कृष्ण हैं तू मेरी सेवा करना नहीं तो बिना हमारी सेवा के मिलेंगे नहीं, ये गुरु कहेगा कि नहीं कहेगा, हाँ शास्त्र कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं ये बात तो ठीक किंतु वो गुरु नहीं, वो उसी में प्रसन्न होगा कि भगवान के प्रति उसका, यदि होगा तो गुरु जी को इतना आनंद होगा कि हमको ये कृतार्थ कर दिया हम जो चाहते थे ये काम और नहीं तो हम लोगों का क्या होता है भजन करने आए माता पिता छोड़कर के बंधु भाई सब लोग छोड़कर और संसारिक पदार्थों के प्रति कहीं रुक जाता है हमारा वाह, कहीं रूप के प्रति, कभी रस के प्रति, कभी गंध के प्रति और कहीं अर्थ के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति यदि वो लग जाता है हो सकता है कि वो जाएगी किंतु बहुत विलंब लग जाएगा, इसलिए गुरु वैष्णव यदि वैसे हों तो उनकी सेवा करते हुए भी किंतु आसक्ति वहीं पर रहेगी राधा कृष्ण के चरणों में रहेगी, महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के चरणों में रहेगी, ये बात ठीक रखना सबसे, बीच में कहीं भी उलझ मत जाओ तुम लोग या हम लोग, जो उलझ जाएगा तो वो तो
गिरने की संभावना है,
गिर ही गया तो
हनुमान जी जैसे
हनुमान जी का
राम जी आदेश दिए उनका कर्तव्य था उनका कैसे ही मन लगे
वो यही पतन निष्ठा हनुमान जी की दिखला रहे हैं, अब उसके प्रति नहीं हुआ वो जो निष्ठा थी उनकी निष्ठा राम में जो चरणों में लगी हुई थी इसको गया सांत्वना दिया सब कुछ किया किंतु इसमें ऐसा आसक्त नहीं हो गया जय राम की सेवा छोड़ दे, ये हनुमान जी की निष्ठा है, इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि मैं बंदर होकर के रहूंगा कोई दोष भी हमको कभी कुछ भी करेंगे तो नहीं लगेगा, ये हनुमान जी की विशेषता है, नहीं तो अटक सकता था, इसलिए कहीं भी हमारी प्रीति न अटके कहीं भी नहीं, इसलिए इस पर खूब विचार करना जिस काम के लिए आए हैं और गुरु जी आदेश दिया है ये अपनी प्रीति साधन में पहले लगाओ और साधन से फिर साध्य वस्तु में लगेगी वहां पर, मान लें कि हम लोग हैं यहाँ पर हमारी अपनी ऐसी प्रीति बढ़ गई जो प्रीति देनी चाहिए थी भगवान ने वो अपने दोस्त में लगा दिया फिर क्या हो गया, इसलिए खबरदार उनके साथ में भक्तों के लिए क्या चीज की जरूरत, प्रेम माने प्रीति होता है ना, तो प्रेम मैत्री कृपा मध्यम भक्तों के लिए मैत्री और यदि कहीं हमने प्रीति जोड़ ली गया ना, उसके लिए भाई प्रीति नहीं, प्रीति भी होगी तो मैत्री युक्त प्रीति, सेवाजुक्त प्रीति, बराबरी की प्रीति, कृपाजुक्त प्रीति, मैत्री, ये समय मैत्री किंतु रहेगी। और कहीं वो प्रीति लग गई तो वो प्रीति नहीं बल्कि वही पर वो काम, भगवान के प्रति ही वो प्रेम रहेगा और सबके प्रति, वैष्णव के प्रति मैत्री युक्त प्रीति, मैत्री युक्त
सेवा,
मैत्री, मैत्री युक्त सेवा और मैत्री युक्त कृपा, ये सब होनी चाहिए। उपेक्षा भी रहेगी तो द्वेष पूर्ण नहीं, वैष्णव मध्यमों को भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, वो कृपा युक्त अपेक्षा, उस पर उपेक्षा करना ही उसकी कृपा है, नहीं नहीं सुधरेगा। इसलिए ये सब विचार मध्यम अधिकारियों को करते चलना चाहिए, हमारी मैत्री कहीं काम न हो जाए, हो विचार कर। इसलिए ये कह रहे हैं, है तो बात छोटी किंतु विचार इसमें हो। हनुमान जी बंधन स्वभाव के, इनको छोड़ दिया या अकेले रह गए चले गए, हम लोग रहते कहते जैसे अच्छा गुरु जी ने तो कहा है या भगवान ने कहा है, बस इसके साथ में रम जाओ, बस भगवान की इधर छोड़वा छोड़ दी, बस उसी में लग गए, लग करके उसको चलिए आपको घुमा लाए, वृंदावन घुमाया, वहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, चलो कलकत्ते भी घुमा लाएंगे, बहुत से देखते हैं ना आते हैं सब, तो साथ में गृहस्थ परिवारों को लेकर के त्यागी लोग और सब घुमा घुमा करके देखते हैं कि 200-500 रुपये मिल जाएंगे एक एक यात्री, बस हो गया उनका भजन। कोई गृहस्थ आया बस लग गए 2400 घंटा उसमें, बस हो गया। इसलिए हमारी प्रीति सेवा इत्यादि कहीं बटने ना पाए भाई, इसका ख्याल वो हनुमान जी का ये आदर्श हम लोग लेंगे। एक लंक में प्रभु जी के पास में चले गए और क्या करने लगे, कभी चरण सेवा कर, कभी खड़े हो गए, देखा जब ऐसे ऐसे चमन बुलाने लगे अपने पुरुषों का, कभी श्वेत छत्र धारण कर लिया, कभी कुछ कर लिया और कभी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गए, इस तरह से सब समय सेवा में एक मिनट के लिए भी इधर गया, यदि रामचंद्र आदेश दिया तो झट पहुंच गए, उसको ये कर दे जैसे इसके लिए आदेश दिया, और भी देखा। हनुमान जी तो आप चले गए, टीका में इन्होंने बतलाया, ये जो बतलाया ना यही टीका में बतलाया कि अपने कर्तव्य के विषय में हनुमान जी वहां हमको छोड़कर प्रत्याग करिया, निज कर्तव्य पारायण भाव वशतः बानर स्वभाव सुलभ प्लुत गति ते अर्थात लंक प्रदान पूर्वक प्रभु समीपे गमन करिया सेवाते संलग्न हुए गए, उसमें नहीं हमें उसको जहां तक है वस्तु वहां तक उसके लिए किया और इसके बाद में प्रभु की सेवा में संलग्न हो गए। कहो जिन्होंने दूरी में हमको त्याग करके वो स्वयं प्रभु के पास में क्यों चले गए, उनका कर्तव्य था हम सभी बातचीत करते, उनको फुर्सत नहीं है सेवा से, प्रभु से सेवा से उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संतना दिया, काम बना दिया और उनको खड़ा करके, और ये भी करते जैसे हम जैसे सेवा कर रहे हैं तुम भी ऐसे ही सेवा कर, यदि कल्याण करना चाहता है कभी इधर उधर में चित्त मत ले जाओ, सेवा से आकृष्ट होकर के चले गए, अर्थात सेवा ही उनका परम आकर्षण और परम धर्म है, प्रभु के समीप इसीलिए वो चले गए, ठहर नहीं सके, क्योंकि प्रभु की सेवा में ही उनको आनंद है, उनका आनंद और किसी काम में नहीं, प्रभु की सेवा करते हैं मन में आप, क्यों जयात्मा संप्रसीद है, जो भगवान की सेवा करेगा जो भजन करेगा उसका मन कभी भी कलुषित हो सकता है या उसमें कोई चिंता आएगी, कभी कुछ चिंता नहीं, भगवान की सेवा करेगा आर्थ हो जाएगा किंतु उस आर्थ होने में भी आनंद है, रोएगा उस रोने में भी आनंद है, वो रोएगा तो क्या कह करके, हे प्रभु दर्शन आप कब देंगे, या कोई रोएगा उस तरह से आपका दर्शन करने लगा इसलिए रोएगा, दुख में आर्थ हो जाएगा, प्रभु संबंधित रोएगा। और फिर हमने देखा भगवती जानकी जी बैठी हैं बाएं तरफ में, दक्षिण में लक्ष्मण लाल जी बैठे हैं और सामने हनुमान जी। ये तीनों क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, सेवा करे पंख यार। सीता जी क्या कर रही हैं, पान की बीड़ी उसको आकर के देखती हुई, कोने से देखती हुई उनके तरफ में दे रहे हैं। और रामचंद्र जी मुस्कुरा करके वो पान की बीड़ी ले रहे हैं, वो वैकुंठ में नहीं देखा था, यहाँ पर कुछ भाव सहित देख। और यह भाव कहाँ है, सबसे परिपूर्णतम रूप में ये देख रहे हैं। प्रिया सीता जी और बड़ी मधुर मुस्कान हंसती हुई उनके तरफ में देखती हुई, पान की बीड़ी लक्ष्मी जी से भी अत्यंत सौंदर्यशाली और तांबुल इत्यादि दान कर रही है।